आज भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह 28 सितंबर को जन्म लिए थे। उनकी एक कृति मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और उसके वर्ग भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की कालकोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्होंने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने यह लेख लिखा। लेख इस प्रकार है। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ। मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस पर अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई सही नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कॉमरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बटू केशवर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है, मैं इसे इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय पर खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किसी या किस तरह से व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मान्यता ना दूं? यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं। यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव है, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर की प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं ना तो एक प्रतिद्वंद्वी हूँ और ना ही एक अवतार, ना ही स्वयं परमात्मा है। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौल षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूँ। मेरा नास्तिकतावाद कोई भी अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों को चाहता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही ना मिला। मैं तो एक लज्जाजू स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे एक साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जाप करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास ना हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ जिससे पहले नेता से संपर्क हुआ, वो तो पक्का विश्वासी ना होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो, यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिसे मैं संपर्क में आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड सचिंद्रनाथ सान्याल, आजकल काकोरी के षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा और जोर शोर से गान है। उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्पक रहस्यात्मक वेदांता के कारण वर्षाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। उसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने रूढ़िवादी बृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा ना सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने का कारण उत्पन्न होता है, वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है। परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांति था। जब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब तक कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने और विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। ना और अधिक रहस्यवाद और ना अंधविश्वास, यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवादी के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, त्रात्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलता पूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिन्हें ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विश्वास पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था। मई 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे एक महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उसे छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी, कि सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे, कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया, कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इसके विपरीत मुझे अदालत के मुखबिर की तरफ पेश किए गए बगैर ही रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। यह सब बेकार की बात है। हम लोगों की भांति विचार रखने वाली अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह CID के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझे काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे, कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी लटकाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में मैं भी नास्तिक होने का दम भरता हूँ। यह ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि यह किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की। यह असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब भी लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान का ना था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना सकता है। ईश्वर में मनुष्य को अधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान में झंझावत के बीच अपने पांव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पता है। एक सप्ताह के अंदर ही यह घोषित हो जाएगा कि मैंने अपना जीवन का ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि की, आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है, किंतु मैं क्या आशा करूँ? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लटकेगा या चढ़ेगा, मेरे पैरों के नीचे तख्ता हटेगा वह पूर्ण विराम होगा, अंतिम क्षण होगा, मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ ना रहेगा, एक छोटी सी झूलती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है। मैं स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझमें इस दृष्टि से देखने का साहस हो। बिना किसी स्वार्थ के यहाँ या यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैं अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय से समर्पित कर दिया है। मैं कुछ कर नहीं सकता था। जिस दिन हमें मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगी जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकती, उस दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोष को, उत्पीड़ को और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है। यहाँ या अगले जन्म में, मृत्योपरांत स्वर्ग में, उन्हें तो मानवता की गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे? उनके अपने लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एक मात्र कल्पनीय रास्ता है। इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विश्लेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख है या धूर्त। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दे, क्योंकि उस हृदय में उद्देलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह दुखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी दोनों अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति उस विश्वास को सत्यता या उसकी परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, उसका विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने अकाट्य है, उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता है, उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृथाभिमानी है। यह मेरा अहंकार नहीं था, मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। मैं उस पर मेरे विश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। थोड़ा सा रहस्यवाद उसे कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अंत प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में सदैव सफल तो संयोग नहीं हुआ हूँ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर करता है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं है, वहाँ दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्यों को, इसके भूत, वर्तमान और भविष्य को, इसके क्यों और कहां को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव हर व्यक्ति ने इस प्रश्नों को अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध में अपने विभिन्न मतों में अंतर है। पूर्व के धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है। भारत में भी बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग है जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसी विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक था। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। हर व्यक्ति अपने को सही मानता है। दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के, हम आलसियों की तरह जो सिद्ध हो चुके हैं उनके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं, और इस प्रकार मानव के विकास को जड़ बनाने के दोषी हैं। सिर्फ विश्वास और अन्य विश्वास, अंधविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रक्रियावादी बना देता है, जो मनुष्य को अपने यथार्थवादी होने का दावा करता है। उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क को प्रहार ना कर सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धाराशायी करके जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की बातों का प्रयोग करके पुनः निर्माण करना। मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न करने के संबंध से आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परमात्मा का, जो प्रकृति के गति का दिग्दर्शन का संचालन करता है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का भय ध्याय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है, यही हमारा दर्शन है। हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। कष्टों और संतापों से पूरी दुनिया, असंख्य दुखों से शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कृपया यह ना कहे कि उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी हमारी तरह किसी नियमों का दास है। कृपा करके यह भी ना कहें कि उसका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था, उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी, उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए, और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं, पन्ने पर उसकी निंदा वाक्यों से काले पूते हैं, प्रार्थना करते हैं। नीरो एक हृदयहीन निर्दयी दुष्ट। एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जाने ली थी और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं, तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन हर घंटे हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और कभी अभी भी दे रहा है, तुम उसे कैसे दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो जो चंगेज खान से प्रत्येक क्षण से अधिक है? क्या यह सब बाद में निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने के लिए साहस करता है? इसके लिए बाद में मुलायम आरामदायक मलहम लगाएगा। ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहाँ तक उचित करते थे कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य के फेंक दो कि यदि वह उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी? इसलिए मैं पूछता हूँ कि उस चेतन परमात्मा ने इस विश्व और इसमें मनुष्यों की रचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए, या उसमें नीरो? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है? तुम मुसलमानों और ईसाइयों, तुम तो पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष निर्दोष व्यक्तियों की कष्ट उनके पुनर्जन्मों का कर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक क्यों परिश्रम किया, और प्रत्येक दिन वह क्यों कहता है कि सब ठीक है, बुलाओ उसे आज, उससे पिछला इतिहास दिखाओ, उससे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे कि क्या वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्ती तक भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिससे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिहर उठेगा। और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझेगा। से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है उसको यह सब देखने दो, फिर कहें सब कुछ ठीक है। क्यों और कहां से, यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो आज जो कष्ट भोग रहे हो पुनर्जन्म के पापी हैं, और आज उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे अतः वे सत्ता पर आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिसमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। न्याय शास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल तीन कारणों से उचित ठहराया जा सकता है, वे हैं प्रतिकार, भय और सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है, भय करने के सिद्धांत का तथा अंत वही है, सुधार करने का सिद्धांत ही केवल अब आवश्यक है और मानवता के प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसका ध्येय अपराधी को योग्य तथा शांति प्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है, किंतु यदि हम मनुष्यों को अपराधी भी मान ले तो ईश्वर द्वारा दिए गए दंड की क्या प्रकृति है? तुम कहते हो वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करते हैं। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ, मनुष्य पर इनका सुधारक रूप से क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वो किसी पाप के कारण पुनर्जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण ना दो, मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक दंड है। मैं पूछता हूँ, दंड की प्रक्रिया की कहाँ तक प्रशंसा करें जो अनिवार्यतः मनुष्य को एक अधिक अपराध करने का बाध्य करे? क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था, या उसको ये सारी बातें मानवता या अकथनीय कष्टों को झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तुम क्या सोचते हो, किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहनत के यहाँ पैदा होने पर इंसान क्या भागे होगा? क्योंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता, वह अपने साथियों से तिरस्कृत व परित्यक्त रहता है। जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊंचा समझता है, उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दंभी ब्राह्मण ने जान बूझ कर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिनको तुम्हारे ज्ञान की पवित्र पुस्तकों, वेदों, कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान पर पिघले शीशे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उनका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषकर युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपने हथियाई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। अपटान सिंक्लेयर ने लिखा है कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास दिला दो और उसकी सारी संपत्ति लूट लो, वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेश को तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? यह तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को लड़ने के की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाले विपत्तियों से उसे बचाया। उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता है कि वे उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त करें? आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं? मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूं कि वह लागू करे। जहां तक कि सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं, वे इसके व्यवहारिक ना होने का बहाना लेकर विरोध करते हैं। परमात्मा को आने दो, वह चीज को सही और तरीके से कर दें। अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत और हमें विरोध करने की क्षमता नहीं। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे। हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज, उसका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसे पढ़ो। एक प्रकृति की घटना है, विभिन्न पदार्थों को निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण की पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ। इस घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क हो सकता है, क्यों एक बच्चा अंधा और लंगड़ा पैदा होता है? क्या उसके पुनर्जन्म किए गए कार्यों के फल नहीं है? जीव विज्ञान वेदांताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। अवश्य ही यह तुम एक बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर सूक्ष्म तथा स्पष्ट है। जिस प्रकार वे प्रेतों और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और दर्शन अत्यंत विकसित। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों में प्रभुत्व रखना चाहते हैं थे और उससे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते थे। सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ और ऐसी ही संस्थाएं अंत में निर्दयी और शोषकों, संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थ हो जाती है। राजा के विरुद्ध हर विद्रोह धर्म में सदैव ही पाप रहा है। मनुष्य की सीमाओं को पहचाने पर उसकी दुर्बलता व दोष को समझने के बाद परीक्षा की घड़ी में मनुष्य को बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने, सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने और संपन्नता में ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर की काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभाविक किए उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ा कर कल्पना एवं चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने वाले के रूप में किया जाता है ताकि कोई मनुष्य समाज के लिए खतरा ना बन जाए। जब उसके अभिभाव को गुण की व्याख्या होती है तो उसको उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त, अन्य सहायक की तरह किया जाता है। जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात तथा त्याग देने से अत्यंत कलेश में हो तब उसे इस विचार से संतावना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को हो सहारा देगा तथा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोग होती थी। समाज में विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है तो उसे श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियों उसे पटक सकती हैं। यही आज मेरी स्थिति है। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, यह सोचने का तरीका है। मुझे
जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। ईश्वर ने मुझे नास्तिक और रोज व रोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया था। मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे पर अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। हमें देखना है कि मैं कैसे निभा पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैं उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और दोस्तों को यह अहंकार है, अगर है तो मैं स्वीकार करता हूँ।